ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮು ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚರಿ ನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚರಿ ಜಯ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ರಾಧ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚರಿ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ ಯಮುನಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram Jaya Radha Vrindavan Vihari Radha Vrindavan Vihari Radhe Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Lalita Devi Jaya Giri Govardhan Giri Govardhan Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Gurudev
हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 21 यातस्यते पाद सरोरुह अर्हनम् निकाम एता अखिल काम लंपटा तदेव राशि इप्सितम् इप्सितः अर्चितो यद भग्न यांचा भगवान प्रतप्यते यतस्यते पाद सरूर अर्हनम् निकाम येता अखिल काम लंपटा तदेव राशि इप्सितम् इप्सितः अर्चितो यद भग्न यांचा भगवान प्रतप्यते यातस्यते पाद सरोरुह अर्हनम् निकाम येता साकिल काम लंपटा तदेव राशि इप्सितम् इप्सितः अर्चितो यद भग्न यांचा भगवान प्रतप्यते यातस्यते पाद सरोरुहर्हनम् निकाम येता किल काम लंपटा तदेव राशि इप्सितम् इप्सितः अर्चितो यद भग्न यांचा भगवान प्रतप्यते अनुवाद हे भगवान जो स्त्री हे भगवान जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेम वश करती है, आप उनकी समस्त कामनाओं को स्वतः ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष उद्देश्य के लिए करती है, तो भी आप उसकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं। किंतु अंततः वह टूटे हुए हृदय से पश्चाताप करती है। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। तात्पर्य, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी ने विशुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार से किया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान की आराधना किसी सकाम कर्म या मानसिक तर्क वितर्क में सफलता पाने की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए न करे। सिर्फ भगवान के चरण अरविंदों की सेवा करने का अर्थ है उन्हीं की इच्छा अनुकूल सेवा करना। अतः नवदीक्षित भक्त को यह आदेश दिया जाता है कि वह गुरु तथा शास्त्रों के द्वारा बताए गए विधि विधानों के अनुसार ही श्री भगवान की पूजा करे। इस प्रकार से भक्ति में सेवा संपन्न करते हुए वह क्रमशः भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त होता है, और जब भगवान उसका श्री भगवान के लिए मौलिक सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है, तो बिना किसी उद्देश्य के भगवान की सेवा करने लगता है। ऐसी अवस्था भगवान के साथ उनके संबंध की अंतिम अवस्था है। तब श्री भगवान बिना मांगे ही अपने भक्त की सुख सुविधा तथा संरक्षण का ध्यान रखते हैं। भगवद्गीता 9.22 में भगवान श्री कृष्ण वचन देते हैं, अनन्य चिंतयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषा नित्यभियुक्ताना योगक्षेम वहम्यहम्। परमेश्वर अपनी भक्ति में पूर्णता से संलग रहने वाले का स्वयं ध्यान रखते हैं। भक्त के पास जो कुछ भी है वे उसकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं और उसे जो कुछ भी चाहिए उसकी पूर्ति करते हैं। तो भला किसी भौतिक वस्तु के लिए श्री भगवान को क्यों परेशान किया जाए, ऐसी प्रार्थना व्रता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यदि कोई भक्त श्री भगवान से अपनी किसी इच्छा पूर्ति की इच्छा करे, तो भी उसे सकाम भक्त नहीं मानना चाहिए। भगवद्गीता 7.16 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत वृषभ। हे भरत श्रेष्ठ, विपदाग्रस्त, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार की पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। जो आर्त तथा अर्थार्थी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निकट दुख से छुटकारा पाने या कुछ धन प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं, वे सकाम भक्त नहीं है। भले ही वे ऐसे प्रतीत होते हैं, वे नवशया भक्त होने के कारण अज्ञानी होते हैं। अन्यत्र भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, उदारा सर्व एवते, वे सभी उदार है। प्रारंभ में भले ही किसी भक्त के मन में कोई कामना रहे, किंतु कालांतर में उसका लोप हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवतम का 2-3 आदेश है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामी उदार दि तीव्रे न भक्ति योगे न यज्यते पुरुषम परम। व्यापक बुद्धि वाला पुरुष, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से भरा हो या निष्काम भक्त हो अथवा मोक्ष चाहने वाला हो, उसे सभी प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदमयं ददाति स्व वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेष्टारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवद्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का इस रविवार के भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो ये जो भागवतम का पंचम स्कंद नवदीप के निवासियों द्वारा श्री भगवान की स्तुति, ये जो अध्याय चल रहा है, इसमें जो भूमंडल है तो उधर अनेक अनेक वर्ष है, खंड है। तो एक है भद्राश्व, तो भद्राश्व वर्ष के जो प्रमुख है वह है भद्रश्रवा, वो भगवान हयग्रीव की उपासना करते हैं। फिर है हरि वर्ष, उधर प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान का उपासना करते हैं। तो ये जो अभी ये जो चल रहा है कीर्तिमाल वर्ष, उधर लक्ष्मी माता जो है ऋषिकेश मदनाचल रूप में उनकी सेवा करती है, पूजा करती है। फिर आगे भी, इसके आगे भी दो तीन वर्ष है, रम्यक वर्ष में मनु महाराज मत्स्यदेव की उपासना करते हैं, हिरणमय वर्ष में आर्यमा कुर्मदेव की उपासना करते हैं। फिर उत्तर कुरु जो है वर्ष, उसमें वराह रूप में पृथ्वी माता भगवान की आराधना करती है। तो अलग अलग खंड के भक्त जो है वो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। तो सबसे मैं जो है सभी वरिष्ठ वैष्णव का कृपा आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, जो ब्रह्मचारी है इधर विशेषकर, और बाकी भी सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो दिव्य विषय है, आज का विषय है शुद्ध भक्ति का, क्योंकि इधर लक्ष्मी माता जो है भगवान से कुछ मांगने के बारे में सलाह दे रही है, स्तुति कर रही है भगवान श्री कृष्ण की। तो शुद्ध भक्ति के विषय में भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है वही बोल सकते हैं अच्छी तरह। तो हम शुद्ध भक्ति के बारे में बोलना पड़े तो कुछ है नहीं उसमें, लेकिन फिर भी प्रभु जी ने बोला है तो जो भी प्रभुपाद की वाणी है, सीनियर भक्तों की वाणी है, तो उसका हम दोहराएंगे। तो इधर प्रभुपाद बोलते हैं कि पहला ही जो श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद, अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो हमें किसी भौतिक अभिलाषा से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उपासना नहीं करनी चाहिए। तो भागवतम के अनेक अनेक जो भक्त है तो उनके द्वारा हम सीख सकते हैं कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहिए। तो भागवतम में दशम स्कंद में सुदामा ब्राह्मण की कथा आती है, जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है। तो इस जो प्रसंग है, जब बोलना चालू करते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो भगवान पहले जो है प्रार्थना करते हैं अपने गुरु से, भगवान श्री कृष्ण से, ताकि जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है अपने हृदय में स्थापित हो और इस विषय में मग्न हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में मग्नता चार रूपों में किया जा सकता है, तो उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और लीला। तो सुखदेव गोस्वामी एकदम मग्न हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं और फिर बोलना चालू करते हैं। जब ऐसा हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके जब हम बोलना चालू करते हैं तो हम बोलते नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं अंदर से, उनकी ही वाणी है, परंपरा से ही श्री प्रभुपाद बोलते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण से मग्नता प्राप्त करनी है। तो अगर हम ऐसा करते हैं मग्नता, तो खुद जो भगवान श्री कृष्ण जो हृदय में है बैठे तो वही बोलते हैं। तो अभी बोलना चालू किया है कि भगवान श्री कृष्ण का एक सखा है, नाम नहीं बताया, क्योंकि उनके गुणों का वर्णन करना चालू करते हैं। किसी भी व्यक्ति का अगर परिचय देना है तो नाम में क्या रखा है, तो उसके अंदर क्या गुण है ना, वो इम्पोर्टेंट है। बताते हैं कि सुदामा ब्राह्मण के अंदर ज्ञान है, अच्छा चरित्र है, वैराग्य है, और वो प्रशांत है और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है। पांच गुणों का वर्णन करते हैं। उनके अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान के बारे में तो पता है कि उनके गुरु सांदीपानी मुनि ने उनको खुद आशीर्वाद दिया था कि पूरा मतलब तुमको कभी भी वेदों का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, कभी आप भूलोगे नहीं। दोनों को आशीर्वाद दिया था ना, भगवान श्री कृष्ण को और सुदामा को। तो उनको तो ज्ञान तो था, अच्छा चरित्र था, उनका आचरण उनका अच्छा था, तो उनमें वैराग्य था और प्रशांत थे। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूपे न शांत, प्रकृष्ट रूपे मतलब इतना उनका दरिद्रता थी फिर भी वो शांत थे, तो मतलब उसको क्या बोलते, प्रकृष्ट रूपे न शांत। और भगवान श्री कृष्ण पे पूरे तरह निर्भर थे, मतलब उनके घर में कुछ भी नहीं था फिर भी जैसा भगवान रखते हैं वैसा वो रहते थे। तो उनकी जो दरिद्रता ये थी उसमें तो वो बहुत खुश थे, है ना, कितना भी कठिनाई आए जीवन में लेकिन फिर भी प्रशांत है और वो सब वो आनंद से जीवन जी रहे थे। लेकिन ये जो दरिद्रता थी वो तो आनंद में थे, है ना, लेकिन उनकी जो पत्नी थी सुशीला उसको सहन नहीं होता था। तो वो सब सोचती थी कि मेरे पति इतने अच्छे भक्त है, है ना, उनमें सद्गुण है, किसी को झूठ बोलते नहीं, है ना, किसी को धोखा देते नहीं, अच्छे भक्त है, फिर इतनी दरिद्रता क्यों, समझ में नहीं आता, है ना। इससे और भी अच्छी बात क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र है, सखा है, भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त है, फिर भी इतनी दरिद्रता, समझ में नहीं आता। तो उनकी जो पत्नी थी सुशीला, तो उनको बोलना चाहती थी कि आपके जो द्वारकाधीश है मित्र कृष्ण उनके पास जाओ, लेकिन डरती थी कि जब से पहले दिन से उनको पता था कि जो सुदामा जो ब्राह्मण है वो मेरे से ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो तो पतिव्रता थी, अगर उनसे इतना प्रेम करते थे कौन सुदामा, तो भगवान श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। तो अगर मैं मर्यादा क्रॉस करूँगी तो मुझे छोड़ देंगे, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना तो भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करते हैं। तो कोई भी हमारा जो रिलेशन होता है, पिता पुत्र का हो, पति पत्नी का हो, उसमें एक मर्यादा होती है ना, अगर उस मर्यादा को हम क्रॉस करते हैं तो प्रॉब्लम आता है ना? तो हमेशा जब हम भक्तों के साथ जो हमारा जो रिलेशनशिप रखते हैं तो हमें अपना मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए। हमारा अधिकार है उनके ऊपर, लेकिन उससे ज़्यादा किसका अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण का उनके ऊपर ज़्यादा अधिकार है। तो हमें हमेशा उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये दरिद्रता देखी भी नहीं जाती, इसलिए नहीं देखी जाती कि उसको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको कपड़े नहीं मिल रहे, उनको खुद को, इसलिए उनको ये देखा नहीं जाता था। उनको अगर किसी दिन खाने को मिल भी जाता था थोड़ा सा तो पति को खिला देती थी और खुद भूखी रह जाती थी। उनकी जो पत्नी थी इतनी महान थी, उनको इसलिए दुख नहीं होता था कि मुझे खुद को खाने को नहीं मिल रहा है, मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने का घर नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए दुख नहीं होता था उसको। तो मेरा इतना महान पति है तो उनका जो दुख देख के उनको देखा नहीं जाता था। तो एक दिन हिम्मत करके सुशीला ने सोचा कि आज बोल ही दूँ, है ना। फिर जो उनकी पत्नी है वो बोलती है सुदामा को एक दिन कि मुझे पता है कि आपके जो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, आपकी बाल सखा है, आपने बोला था एक बार, तो इतना ही बोली तो सुदामा को लगा कि अब समझ गए सुदाना क्या बोलने वाली है। तो पत्नी बोलेगी कि जाओ भगवान श्री कृष्ण के पास, है ना, कुछ मांग के लाओ, उनके पास कुछ कमी नहीं है ना, तो वो तो लक्ष्मीपति है। तो सुदामा कहेंगे अरे वो लक्ष्मीपति है, किस किस को देंगे, इतने सब मांगने वाले आते हैं तो किस किस को देंगे। तो सुशीला बोलती है उनका कुछ कमी नहीं होने वाला, लक्ष्मीपति है वो, भगवान है, तो कि देंगे अगर समझो किसी को भी, कितना भी देंगे तो उसमें कुछ कमी आने वाली है क्या, नहीं। सुदामा बोलता है कि फिर भी हम नहीं मांगेंगे, हम क्यों मांगेंगे, इधर मांगने का जो प्रसंग चल रहा है ना। तो ये देखिए मैं पूरा सुदामा का कथा नहीं बताऊंगा, सुदामा का जो मांगने का हिस्सा है ना भगवान श्री कृष्ण से शुद्ध भक्ति का, तो वही कि उसी के ऊपर मैं प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। तो सुदामा की पत्नी बोलती है कि भगवान जो है ना गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमोनमः, तो ब्राह्मणों के हितेशी है, ब्राह्मणों को सब दान देते हैं, है ना, आप जाइए, आप तो ब्राह्मण है ना, तो आप द्वारका जाइए और भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगिए, क्योंकि क्षत्रिय का राजा का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों को दान देते ही है ना। तो पहले के जमाने में जो क्षत्रिय राजा होते थे तो ब्राह्मण को जो मांगा वो देते थे, जो अच्छे राजा है वो तो देते ही थे, है ना, जरासंध जैसे राजा भी देते थे ब्राह्मणों को, जो कुछ भी चाहिए वो देते थे। तो आप जाइए, वो क्षत्रिय है ना, राजा भी है, ब्राह्मणों का मदद करते हैं। सुदामा बोलता है मैं ब्राह्मण किधर हूँ, ब्राह्मण तो गुणों से होता है ना, तो मेरे पास क्या गुण है, नम्रता के कारण बोलता है सुदामा। तो ठीक है आप ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन द्वारका के नागरिक तो हो, राजा है ना वो, तो जो द्वारका के जो नगरवासी है उन राजा का कर्तव्य है ना उनका देखभाल करना, उनके क्या है क्या नहीं देखना, तो एक द्वारका के नागरिक समझ के जाओ मांगने के लिए। सुदामा बोलते हैं वो कितने सारे उधर आएंगे, हम क्यों सहायता मांगे के भगवान कृष्ण की, और वो हमको, मैं ठहरा इतना दरिद्री इंसान, और क्यों वो क्यों हमारी सहायता करेंगे। सुदामा की पत्नी बोलती है आप दरिद्र हो, लेकिन लोगों की दृष्टि से आप दरिद्र हो, लेकिन वास्तव में आप क्या हो, सच्चे धनवान हो। क्यों सच्चे धनवान हो, क्योंकि आपके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव है, प्रेमा भक्ति है, आप भगवान श्री कृष्ण के सखा हो, है ना, हृदय में प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और ये जो वास्तविक धन है वो आपके पास है ना, तो ये इतना सारा आप धनवान हो, भले भौतिक लोगों के दृष्टिकोण से आप दरिद्री हो, लेकिन वास्तव में क्या हो, आप सच्चे धनवान हो। तो सुदामा बोल, फिर भी सुदामा राजी नहीं होते, फिर आखिर में सुदामा की पत्नी बोलती है कि सुदामा बोलता है कि मैं जाऊंगा ठीक है, लेकिन उधर जाके कुछ मांगूंगा नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पास जाऊंगा लेकिन उधर कुछ मांगूंगा नहीं। सुदामा की पत्नी बोलती है कि भगवान है वो, है ना, वो अंतर्यामी है, उधर आपके मन में जो चल रहा है ना वो सब उनको पता चलेगा, उनका उधर जाके उधर कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, उधर आप जाइए, मेरी इच्छा है कि आप जो जो आप आपके दिल में है मन में है जो आप मांगना चाहते हैं वो कृष्ण देंगे, आप जाइए। तो सुदामा बोलता है कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण से। अरे बोलते अक्का जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की है ना, प्रेम किया है, सेवा किया है, तो इतना सब किया है कृष्ण कृष्ण के लिए, अभी कृष्ण इसके बदले में जो कुछ धन देंगे, कृष्ण का प्रेम देंगे, वो लेके आना। कृष्ण का जो प्रेम है वो जो कृष्ण देंगे आपको वो लेके आना। जब ऐसा बोलती है पत्नी तो इनके हृदय को लग जाता है कि कुछ मांगने को नहीं बोल रही अभी, अभी क्या बोल रही, खाली श्री कृष्ण का प्रेम लेके आओ, मतलब शुद्ध भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ना। हम भगवान श्री कृष्ण के पास जो जाते हैं ना, तो हम कुछ मांगने के लिए कभी जाना नहीं चाहिए, है ना। तो ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा जो है हमारी सबसे श्रेष्ठ परंपरा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है ना, भगवान की श्री कृष्ण के पास कभी भी कुछ मांगने के लिए जाते नहीं, कभी भी कुछ मांगने के लिए जाते नहीं। कितना भी दरिद्री हो, सुदामा ब्राह्मण जैसा व्यक्ति, लेकिन भगवान के पास हम जब जाते हैं ना, कुछ देने के लिए जाते हैं। और भौतिक जगत में भी देखिए आप, जिससे आप प्रेम करते हो तो उसके पास जब जाते हो तो खाली हाथ जाते हैं क्या? नहीं, कुछ लेके जाते हैं ना। तो ये मतलब भगवान श्री कृष्ण के पास जो जाने के लिए अभी सुदामा तैयार हो गए हैं, तो ठीक है मैं जाऊंगा, सुदामा बोलते हैं, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊंगा, खाली हाथ कैसे जाऊंगा। तो पत्नी को पूछते हैं कि कुछ घर में है क्या? अभी घर में क्या है, खाली मटके में पानी है, बाकी कुछ है नहीं। तो मांग के लाओ कुछ। तो सुदामा का एक ये था कि सुदामा जब भिक्षा मांगने के लिए जाते थे तो सिर्फ पांच घर में जाते थे, अगर पांच घर में कुछ नहीं मिला तो ऐसा ही पानी पी के सो जाते थे। तो अभी भगवान श्री कृष्ण को मिलने जाना है, जिसे जीवन भर सेवा की है, भक्ति की है, उस उनको मिलना जाना है, अभी खाली हाथ कैसे जाएंगे। तो पत्नी को बोलते जाओ कुछ मांग के लाओ। पत्नी अनेक घरों में जाते हैं, बोलते हैं कि तुम तो रोज मांगने आती हो, है ना, हमारे पास कुछ नहीं है। बहुत घर में जाने के बाद चार मुट्ठी चिवड़ा मिलता है, वो भी अलग अलग साइज का, और चार घर से मिला हुआ अलग अलग साइज का होगा ना, और थोड़ा बासी भी होगा, कितने दिन से पड़ा रहेगा। फिर वो चिवड़ा एक कपड़े में बांध के कमर को सुदामा बांधते हैं। तो ये देखो, जब हम भगवान श्री कृष्ण को मिलने जाते हैं मंदिर में, तो हमेशा हमें कुछ लेके जाना चाहिए, है ना, खाली हाथ कभी जाना नहीं चाहिए। क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उनको जो मिलने को हम जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं, है ना। आप भौतिक जगत में भी देखिए कि जो देने वाला है हमेशा देता ही रहता है, और जो लेने वाला है ना हमेशा लेता ही रहता है ना। कभी अभी देखो, पिता भी पुत्र का जो रिलेशन होता है, पिता हमेशा पुत्र को देता ही रहता है, कभी पुत्र देता नहीं पिता को, रेयर रेयर केस में देते हैं। तो जिससे भी हम प्रेम करते हैं ना, जब हम उसको मिलने को जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए साथ में। तो इधर हम इनका कथा में भी हम देखते हैं कि ये द्रोणाचार्य जो है, और ये जो राजा है ना, द्रुपद राजा, तो वो भी दोनों मित्र थे, बाल सखा थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ब्राह्मण था वो भी, एक क्षत्रिय थे, एक राजा थे, है ना, एक ब्राह्मण थे, ये दूसरे क्षत्रिय थे। तो उधर हम जाते हैं, देखते हैं कि जब ये अश्वत्थामा को दूध नहीं मिल रहा था, वो उधर भी गरीबी थी, तो ये जब निकले इनको मिलने के लिए राजा को, द्रुपद राजा को, तो एक बार भी सोचा नहीं कि कुछ लेके जाना चाहिए हाथ में, सोचा क्या कभी? नहीं। इधर द्रोणाचार्य मिलने जा रहे हैं द्रुपद राजा को, तो उनके पास तो कुछ नहीं था, ऐसा नहीं, जैसा कि ये तो दरिद्री थे सुदामा, उनके पास तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ मटके में पानी था, फिर भी वो भीख मांग के चार घर से लेके गए, हाथ में कुछ लेके गए। लेकिन ये जो हम इधर देखते हैं, द्रोणाचार्य जब गए द्रुपद महाराज को मिलने के लिए, तो खाली हाथ गए, उधर खाली हाथ गए। तो बाद में कथा तो तुमको पता, आपको सबको पता है कि बाद में उधर जाने के बाद क्या हुआ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें, हम जिससे प्रेम करते हैं तो हमेशा हमें खाली हाथ जाया नहीं जाएगा, है ना, कुछ तो हमें लेके जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा हम किससे प्रेम करते हैं, भक्त भगवान श्री कृष्ण से, तो उनको मिलने को जब हम जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये कथा है, खूब बहुत अच्छी कथा है। तो बाद में भी सुदामा जब जाते हैं मिलते, कथा पूरा बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसी में फिर क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। तो जब सुदामा जाते हैं ना उधर, भगवान श्री कृष्ण को जब मिलते हैं, तो उधर कुछ मांगते हैं क्या भगवान श्री कृष्ण को?
नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, खुद खुद जो भी पोए है वही दे के आते हैं ना। भगवान श्री कृष्ण कुछ मांगते हैं तो भगवान कृष्ण तो इंद्र को भी जितना ऐश्वर्य नहीं था उनको देते, वो अलग बात है, सिक्के की दूसरी बाजू है। लेकिन सिक्के की एक बाजू क्या है, भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है जो भगवान श्री कृष्ण से कभी कुछ मांगते नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है ना, है ना, तो उनको उनके पास अंतर्यामी जो भगवान है उनके पास जाके हम अगर पूरा लिस्ट लेके जाएंगे तो भगवान का एक तरह से अपमान है ना। भगवान की भगवद गीता में वचन दिया है, अनन्य चिंतयन्तो मा ये परिपासते देशानित्य वियुक्त न योगक्षेम वाहम्यहम्। जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, शुद्ध भक्त है, भगवान श्री कृष्ण उनके योग और क्षेम की सब भगवान व्यवस्था करते हैं ना। शुद्ध भक्त का योग और क्षेम की व्यवस्था करते हैं, मतलब योग मतलब जो भी हमारे पास नहीं है वो भगवान देते हैं, मतलब पैसा प्रॉपर्टी जो भी भक्त को आवश्यकता है तो योग की व्यवस्था करना, मतलब उसकी व्यवस्था करना। और क्षेम का मतलब है सुरक्षा, सुरक्षा है ना। तो दोनों की व्यवस्था जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं उनकी भगवान ने गीता में वचन दिया है इधर, है ना। जब हम भक्ति में आते हैं तो प्रभुपाद ने तो बोला है पैसा कमाने के लिए कभी जो है ना नौकरी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन मिला है ना वो किस लिए मिला है, भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। और इतना जो महत्वपूर्ण हमारा जो जीवन है ना वो हमें पैसा कमाने के लिए गंवाना नहीं चाहिए, तो किस लिए करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो कभी कभी बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत लोग अन्य देवता के पास जाते हैं, अनन्य शब्द आया ना, अनन्य शब्द का मतलब है भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के अन्य देवता के पास अगर हम जाते हैं ना तो अनन्य नहीं है, है ना। तो भगवान इधर चैतन्य भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि श्रीधर कोल्याबेचे जो थे ना वो उनके पास तो ऐसा ही सुदामा जैसा कुटीर छत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसा जीवन था उनका। तो चैतन्य महाप्रभु आके उनको सताते थे रोज आके, तो बिना पैसे लिए केले का पत्ता लेके जाते थे। और एक दिन ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु आए श्रीधर के पास और श्रीधर को बोले कि श्रीधर देख तो गांव में सब लोग चंडी की उपासना कर रहे और कितना पैसा कमाया है, घर बनाया है, तेरे पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, है ना, छत नहीं, ऊपर पेड़ की छाया भी नहीं है तेरे घर के ऊपर, है ना, कुछ भी नहीं है तेरे, तो सब लोग चंडी की उपासना कर रहे और पैसा कमा रहे, तू भी जाना चंडी की उपासना कर, तू क्यों इधर भगवान के पास भक्ति कर रहा है, ऐसा बोलते भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको। तो श्रीधर बोलता है नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण के छोड़ के किसी अन्य की तरफ देखूंगा भी नहीं, ना तो भक्ति करने का बात है, है ना। तो इतने दृढ़ थे भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में। तो ये होता है अनन्य शब्द का मतलब कि ये जो किसी और देवता के पास हम जाते हैं तो ये क्या हो गया, अनन्य भक्ति नहीं है, है ना। तो हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण के छोड़ के किसी और व्यक्ति के पास या देवता के पास भक्ति करने के लिए नहीं जाना चाहिए, उपासना नहीं करना चाहिए। जगन्नाथपुरी में एक अर्जुन मिश्र नाम के भक्त थे और वो रोज महान भक्त थे, रोज गीता का पाठ करते थे और रोज भिक्षा मांगने जाते थे नगर में, भिक्षा मांग के जो भी मिलता था पत्नी भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेते थे और दिन भर गीता का पाठ करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत बारिश आया, है ना, बहुत बारिश आया, तो ये उस दिन इतना बारिश हुआ कि घर से वो जा ही नहीं, बाहर गए ही नहीं, जाने को हुआ ही नहीं। तो वैसे ही अभी इतना बारिश है तो बाहर कैसे जाए, तो वैसे ही बैठे रहे भिक्षा मांगने के लिए, उनको जाया नहीं गया। तो शाम को फिर पत्नी बच्चे सब वैसे ही पानी पी के सो गए और जब पत्नी को कुछ खाने के नहीं मिला तो उसके पहले उन्होंने क्या करती, ये श्लोक लेती है 9.22, अन्य अभिलाषिता नहीं सॉरी अनन्य चिंता यंतोमा, और वो श्लोक के ऊपर तीन खरोच मारती है पत्नी उनके पास से भगवद्गीता लेके, और फिर सो जाती है। तो बाद में सोने के बाद तो दो सुंदर युवक बहुत सारा खाने का प्रसाद लेके आते हैं शाम को, थोड़ा ये सोने के बाद दरवाज़ा खटाते खटखटाते हैं, और एक तो सांवले रंग का था दरवाज़ा खोलने के बाद, और दूसरा गोरे रंग का था, और बहुत सारा खाने का प्रसाद देके चले जाते हैं। और जब ये जो सांवले रंग का जो व्यक्ति था तो उनके मुख पे चेहरे पे तीन खरोच थी ऊपर, तो जब बाद में प्रसाद एक लेने के लिए जब पत्नी उठाने गई अर्जुन मिश्र को, तो ये सब बताया कौन दिया क्या हुआ कौन आए थे, लेकिन जो सांवले रंग के थे व्यक्ति थे तो उनके चेहरे पे तीन खरोच थी। क्यों ऐसा था? क्योंकि भगवद गीता का जो श्लोक है ये अनन्य चिंतयंतो मा, तो उसको उन्होंने क्या किया था, तीन बार खरोच किया था। तो भगवद गीता का श्लोक तो ये मुख से आया है ना भगवान श्री कृष्ण के, और इस श्लोक में वचन है, भगवान श्री कृष्ण भक्तों को वचन देते हैं कि मैं तुम्हारे योग और क्षम की व्यवस्था करूंगा, है ना। तो दोनों मतलब बहुत बार जब जयदेव को ये जो राजकुमार थे उनमें से सावला कौन था, स्वयं भगवान कृष्ण थे, और गोरख कौन था, बलदेव जी थे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं स्वयं व्यवस्था करता हूँ भक्तों की, मेरा सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा करता है, और मैं स्वयं भक्तों की जो आवश्यकता है उसकी मैं पूर्ति करता हूँ, है ना। तो ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो बाकी देवता जो है ना, जैसे कि वेदों में जो कर्मकांड विभाग के जो आसक्त लोग है ना, वो अनुष्ठान वगैरह करके स्वर्ग प्राप्ति करते हैं, है ना, किसी देवता की उपासना करते हैं, और स्वर्ग प्राप्त होने के बाद भी जब उनके पुण्य खत्म होते हैं तो गिरना पड़ता है ना वहाँ से नीचे, मुंडी मतलब सर नीचा करके इधर आना पड़ता है, तो ये सुरक्षा नहीं हुई ना, सुरक्षा हुई क्या ये, नहीं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, मुकुंद मतलब मोक्ष प्रदान करने वाला, जन्म मृत्यु चरा व्याधि से कोई भी नहीं बचा सकता, कोई देवता नहीं बचा सकता, कोई मनुष्य कोई भी व्यक्ति हमें ये जो भयानक जन्म मृत्यु चरा व्याधि है ना, इससे मुक्ति प्रदान कृष्ण प्रदान नहीं कर सकता, केवल मुकुंद के सिवा, भगवान श्री कृष्ण के सिवा। तो बाकी देवता हमें कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, कर सकता है कोई बाकी देवता कैसे हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है? तो एक बार जयदेव गोस्वामी की कथा आती है ना, एक बार जयदेव गोस्वामी जो है किसी राजा के पास जाते हैं, और वो राजा बहुत सारा उनको धन देता है, और जब धन लेते आते हैं तो चोर रास्ते में मिलते हैं उनको, चार चोर मिलते हैं, और उनके हाथ दोनों हाथ काटते हैं, दोनों पैर काटते हैं, और उसको एक वेल में फेंक देते हैं कुएं में जिसमें पानी नहीं है। बाद में भगवान श्री कृष्ण की उनकी रक्षा तो की, और कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें कहने का क्या ये है, समझना क्या है इसको, कि जो राजा उनको धन दिया था मतलब राजा ने उनके योग की व्यवस्था की थी, लेकिन सुरक्षा की व्यवस्था किया क्या, नहीं। जो योग और क्षेम, क्षेम मतलब सुरक्षा, तो हम किसी के भी पास जाओ, राजा के पास जाओ नहीं देवता के पास जाओ, तो हमारे जो भौतिक आवश्यकता है ना, पैसा प्रॉपर्टी, इसका तो व्यवस्था हो सकता है, लेकिन सुरक्षा, सुरक्षा कौन दे सकता है, भगवान श्री कृष्ण के सिवा सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। और एक तरह से हमारे पास जब धन आ जाते हैं तो हम अहंकार में आ जाते हैं, है ना, और फिर हमारा ये हो सकता है, पतन हो सकता है। जैसे एक कथा आती है ना भगवान श्री रामचंद्र के बारे में, तो अयोध्या में राजसभा भरी थी, और राजसभा में भगवान राम बहुत लोगों को दान, उनकी जो भी समस्या है उसका हल, है ना, सिर्फ दान ही नहीं, जो भी समस्या है उसका हल जब राज्यसभा में बैठते हैं तो वशिष्ठ मुनि होते हैं, बाकी सब भी होते हैं, तो ऐसा दे रहे थे। तो सबको देखे हो गया तो लक्ष्मण को पूछे कि अभी कुछ बचा है क्या कोई देखो, तो लक्ष्मण बोला कि सब हो गया, अभी कोई नहीं बचा, जरा द्वार के पास जाके देख के आओ, बोले प्रभु। तो लक्ष्मण द्वार के पास गया और देखा तो कोई नहीं है। तो फिर लक्ष्मण आए प्रभु रामचंद्र के पास और बोले कि कोई नहीं है। प्रभु बोले कि और एक बार देख के आओ, द्वार के द्वार में जाओ और एक बार ठीक से देख के आओ, एक भक्त है उधर। तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण जो है ना अंतर्यामी है ना, अंतर्यामी मतलब हमारे मन की बात भी वो जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास जब जाते हैं ना हम, तो हमारे मन में क्या चल रहा है तो ये सब भगवान श्री कृष्ण को पता होता है। जैसे महाभारत में कथा आता है ना कि जब पांडव लोग सब युद्ध जीत गए और जीतने के बाद ये धृतराष्ट्र तो बड़े थे ना घर में, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए सब जाते पांडव और कृष्ण। तो सबसे पहले बड़े तो युधिष्ठिर ये चरण स्पर्श करते हैं ना, फिर ये धृतराष्ट्र सोचता है कि मैं अभी भीम जब मेरा पैर चरण स्पर्श करने के लिए आएंगे तो मैं उसको मिट्टी में लेके उसको उधर ही खत्म करूंगा, ऐसा सोचता है मन में और पूरा प्लान किया रहता है उन्होंने। अभी ये जो धृतराष्ट्र ने प्लान किया रहता है हृदय के अंदर, तो किसी को बोला नहीं, किसी को बोला नहीं। अभी कृष्ण तो उधर थे, उनका नाम क्या है, अंतर्यामी। अभी ये अंधा जो प्लान किया है मन में, भगवान श्री कृष्ण के को मालूम नहीं है क्या? तो भगवान जब भीम आता है तो भगवान इशारे से बोलते भीम गले मत मिलना, वो मूर्ति है ना उनको मिला दे। तो फिर भीम क्या करता है, एक मूर्ति लेके धृतराष्ट्र के गले मिलवाता है। तो धृतराष्ट्र ऐसा उसको मिट्टी में लेता है तो जो मूर्ति थी पोलाद की उसका इतना चुरा चुरा हो जाता है। तो वो भी क्षत्रिय था, उनके अंदर भी बहुत ताकत थी। तो भीम का चुरण करने का उन्होंने सोचा मतलब क्या है, उनके ताकत कम होगा क्या, तो मूर्ति का चुरण होता है उतना उतना। अभी ये जो बात है ना, भगवान कृष्ण ने किसी को बोला है, धृतराष्ट्र ने किसी को बोला नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को पता था ना, क्यों, क्योंकि उनका नाम अंतर्यामी है। अभी मंदिर में आके हम बड़ा लिस्ट लेके आते हैं ना, मुझे एक कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए, अभी हम किस लिए इधर आए हैं उनको पता नहीं है क्या, पता है कि नहीं, वो तो अंतर्यामी है। तो बहुत बड़ा लिस्ट लेके उधर जाना चाहिए क्या नहीं हमको, नहीं। भगवान श्री कृष्ण भक्तों का इधर वचन दिया है कि उनके योग का भी और क्षेम का दोनों का मैं व्यवस्था करूंगा, है ना। तो इधर मैं जो कथा बता रहा था अयोध्या का, तो राम को भी पता है उधर कौन भक्त आया है, लक्ष्मण को बोल रहे जा और एक बार देख क्या, है ना, वो भी अंतर्यामी है ना। तो उधर एक कुत्ता था और उनके माथे में ऐसा किसी ने लकड़ी से मार के ऐसा खून निकल रहा था उस कुत्ते के माथे से। तो जब लक्ष्मण ने कुत्ते को देखा तो कुत्ते को पूछा लक्ष्मण ने, आप मिलना चाहते हो क्या राम से? तो कुत्ते ने बोला हाँ मैं इसलिए आया हूँ। तो कुत्ते लेके गए लक्ष्मण भगवान राम के पास। तो उनका एक समस्या था, क्या समस्या था, वो न्याय चाहते थे। अभी राजा का कर्तव्य क्या है, सबको न्याय देना, एक क्षेत्रीय राजा का कर्तव्य है। अभी कुत्ता आया है न्याय मांगने के लिए सभा में, अभी न्याय तो देना है। तो वो कुत्ता बोला क्या क्या समस्या है, उन्हें बोला एक सन्यासी जो है ना प्रसाद लेके जाते जाते मेरे माथे पे अपना जो डंडा रहता है ना सन्यासी का उससे मारा है और मेरा खून निकला है, मुझे न्याय चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि बैठे थे ना उधर, वशिष्ठ मुनि बोली सन्यासी को अपन दंड नहीं दे सकते, ये नियम है। क्या नियम है, सन्यासी भगवान का भक्त है उसको हम क्या कारण दंड नहीं दे सकते। अभी प्रभु को पड़ा प्रॉब्लम, अभी दंड, ये तो न्याय मांग रहा है ना कुत्ता, और गुनहगार कौन है, सन्यासी है। अभी वशिष्ठ मुनि बोल रहे कि हम दंड नहीं दे सकते सन्यासी को, है ना। तो थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए प्रभु प्रॉब्लम में आ गए, ये कुत्ते को समझ में आया ना। तो कुत्ता बोला मेरे पास सोल्यूशन है, बोला कुत्ता क्या सोल्यूशन है? कुत्ता बोला ये जो अयोध्या में सबसे बड़ा जो मठ है, पहले के जमाने में जैसे इस्कॉन मंदिर होते थे वैसे मठ होते थे ना, तो अयोध्या में जो सबसे मठ है ना, तो वो जो सन्यासी है जिसने मेरे माथे पे डंडा मारा है ना, उसको मठाधीश बना दो बोले। मठाधीश मतलब पूरा जो संपत्ति रहता है ना मठ का, तो उनके साइन से चेक निकलेंगे ना। तो कुत्ता बोला अरे प्रभु बोले तो ये तो शिक्षा नहीं। लक्ष्मण और प्रभु रामचंद्र बोले तो ये क्या शिक्षा हुई, हमको तो दंड देना है ना सन्यासी को, तो ये किधर शिक्षा दंड है? कुत्ता बोला कि मैं पूर्व जन्म में वो जो मठ जिसका नाम मैं बोल रहा हूँ ना, उसका मठाधीश मैं ही था बोला। तो मैंने क्या किया था, जो मंदिर का जो संपत्ति होता है ना, थोड़ा घर में लेके जाता था। भगवान का जो संपत्ति है वो हम घर में अगर यूज करेंगे अपने पर्सनल इसके लिए, तो बाद में कुत्ता बनना पड़ेगा ना। तो अभी ये जो सन्यासी है उसको भी क्या करो, मठाधीश बना दो, तो वो भी क्या करेगा, कुछ हो ही जाएगा ना। लक्ष्मी जब आती है ना तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो फिर अगले जन्म में वो भी क्या बनेगा, मेरे जैसा कुत्ता बनेगा ना। तो वास्तव में हमारे पास अगर हमारी आवश्यकताओं से ज्यादा अगर संपत्ति होती है तो क्या है, एक्चुअली शिक्षा है वो। जैसे अभी कुत्ता क्या है, उसको दंड दे रहा है, उसको मठाधीश बना रहा है ना। तो अगर हमारे पास धन है ज्यादा आवश्यकता से, तो एक तरह से हमें दंड मिला है वो। प्रभुपाद ने क्या बोला है कि आवश्यकता से ज्यादा अगर हम इधर खींचते हैं, हमारे हाथ में थोड़ा शक्ति है समझो, अगर आवश्यकता से हमें हम इधर से हम थोड़ा खींचते हैं ना ज्यादा, तो क्या होता है, उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है ना। तो जो नल कुबेर और मणिग्रीव की भी कथा आती है ना, तो कुबेर के पुत्र थे दोनों, और दोनों के पास संपत्ति ऐश्वर्य का कुछ कमी नहीं था। तो दोनों क्या हो गया, दोनों नशे में दूर क्या किया, नारद मुनि का उन्होंने अपमान किया था। तो इस तरह हम जब भगवान श्री कृष्ण के इधर शुद्ध भक्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे जो गौड़ी परंपरा है, हमारे जो शूल प्रभुपाद है, तो उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया है, हम जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं ना, सब भक्त हमारी गौड़ी वैष्णव परंपरा, तो भगवान के पास जब हम जाते हैं ना, कुछ लेने के लिए नहीं जाते, भगवान को हम देने के लिए जाते हैं, कुछ लेने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।